ओम शांति। इस द्विदिवसीय भट्टी के पहले दिन के दूसरे सत्र में आदरणीय सचिन भाई जी का और आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी का जो विषय है बहुत ही सुंदर विषय है, अध्यात्म जगत का कोहिनूर एकांत। एकांत की स्थिति क्या है, एकांत में कैसे जाना है और उससे हमें क्या क्या फायदे होंगे, इस पर आदरणीय सचिन भाई जी प्रकाश डालेंगे।
ओम शांति। एक दिन अभी सूरज निकला भी नहीं था, अंधेरा ही था, तो एक मछुआरा निकल पड़ता है एक तालाब की ओर मछली पकड़ने के लिए, और जब जा रहा होता है तो उसे ठोकर लगती है और वो गिरता है, और जब वो देखता है किस चीज से ठोकर लगी तो वो पाता है पत्थरों से भरी एक पोटली है। वो मछुआरा उस बैग, उस थैली को ले लेता है हाथ में और आगे निकल पड़ता है। वो तालाब के किनारे बैठ जाता है, सूर्योदय की प्रतीक्षा करता हुआ, और तब तक उस थैली से, उस पोटली से एक एक पत्थर निकालता है और उस तालाब में फेंकता है। सुनसान, कोई आवाज नहीं, केवल जब वो पत्थर उस तालाब में गिरता है केवल उसी की आवाज, और वो जीवन के विषय में सोचता हुआ बैठा रहता है ताकि सूर्योदय हो जाए फिर वो मछली पकड़े। और अचानक सूर्योदय होता है, उसके हाथ में अंतिम पत्थर होता है, अभी वो फेंकने ही वाला है, अचानक सूर्य की किरण उस पत्थर पर गिरती है और आश्चर्य का भाव और पश्चाताप का भाव हृदय में समा जाता है। जिन पत्थरों को वो फेंक रहा था वो पत्थर नहीं, हीरे थे, और कितने हीरे उसने फेंक दिए। परंतु उसे खुशी भी है कि कम से कम एक हीरा तो बच गया, और जो अब मेरे हाथ में है, नहीं तो मैं इसको भी फेंक चुका होता। परंतु दुख इस बात का है कि इतने हीरे जो थे दूसरे, वो मैंने फेंक दिए। पर साथ साथ जैसे कहा, खुशी भी है कि कम से कम एक तो बचा। उस मछुआरे की जो स्थिति है वही मनुष्य की भी स्थिति है। पता नहीं मनुष्य अपने जीवन में कितने आए हुए हीरों को पत्थर समझकर फेंक देता है। वो हीरा कोई भी हो सकता है, चाहे भट्टी हो सकती है, चाहे मधुबन में जाने का अवसर हो सकता है, या कोई सेवा का अवसर हो सकता है। या फिर विशेष जीवन में अचानक मिला हुआ मौन हो सकता है, अचानक आई हुई चिंतन की घड़िया हो सकती है या फिर किसी अज्ञात क्षणों में जीवन में अवतरित हुआ एकांत हो सकता है। तो इस आध्यात्मिक जीवन में, अलौकिक जीवन में, सुबह भी कहा था, उन्नति के कई द्वार हैं और उसमें से एक महत्वपूर्ण साधन या द्वार है एकांत, मौन, अंतर्मुक्ता। ये ऐसे शब्द हैं तीनों, क्योंकि जिनके उच्चारण मात्र से अनुभूति का एहसास केवल उच्चारण मात्र से होता है। मौन, एकांत, अंतर्मुक्ता। भीड़ में एकांत खो गया है और शब्दों में मौन खो गया है और बाह्य जगत की बाह्य मुक्ता में अंतर्मुक्ता खो गई है। क्या करें जिससे ये तीनों ही वापस आ जाए? तो आज हम चर्चा करेंगे एकांत की। हिंदी में दो शब्द हैं, एक है एकांत और दूसरा है अकेलापन। एक है सॉलिट्यूड और दूसरा है लोनलीनेस। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक है एकांत और दूसरा है अकेलापन। कौन सा अच्छा है? एकांत। और अकेलापन क्या है? अकेलापन दुख की स्थिति है, अकेलापन उदासी की स्थिति है, अकेलापन काटता है, अभाव की स्थिति है। कोई चाहिए पर वो है नहीं, कुछ चाहिए पर वो है नहीं, या जीवन का कोई गहरा दर्द है, ऐसी जो स्थिति है वो अकेलापन है, जहां ऐसा लगता है कोई भी मेरा नहीं है और आत्मा दुखी हो जाती है, डूब जाती है अपने ही आंसुओं में, वो है अकेलापन। और एकांत क्या है? एकांत में भी व्यक्ति अकेला है, अकेलेपन में भी अकेला है, दोनों जगह किसी दूसरे व्यक्ति नहीं है, परंतु फिर भी एकांत आनंद की अवस्था है। एकांत ब्लिसफुल स्टेट, आह्लाद की अवस्था है। एकांत हर्ष की अवस्था है। जहां अकेलेपन में कुछ चाहिए, वहां एकांत में कुछ भी नहीं चाहिए। अकेलापन इंतजार है किसी का, एकांत फुलफिलमेंट है, कुछ भी नहीं चाहिए, पूर्ण काम की अवस्था है। और यही एकांत अध्यात्म जगत का वह हीरा, वो बहुमूल्य रतन, वो कोहिनूर है कि जिसमें प्रवेश करते ही आत्मा अलौकिक आनंद की अनुभूति करती है। भारत के इतिहास में एक ऐसा ही उदाहरण है। 1908 अलीपुर हत्याकांड, दो स्वतंत्रता सेनानियों को तो बंदी बना दिया गया, पर एक तीसरे को भी बंदी बनाया जो कि युवा था, जो कि क्रांतिकारी था और जो कुछ ऐसा ऐसा लिखता था अंग्रेजों के विरुद्ध, और सरकार को लगा कि इसका भी उसमें हाथ है, अरविंद घोष। उस अरविंद घोष को पकड़ लिया गया, अलीपुर मर्डर कॉन्स्पिरसी, और उसे जेल में डाल दिया गया। जब वो जेल में गया तो एक विद्रोही क्रांतिकारी था जो भारत की स्वतंत्रता चाहता था, एक साल जेल में रहे और उस जेल में एकांत था और उसी एकांत में आध्यात्मिक परिवर्तन हुआ। वहां उन्होंने कुछ ऐसे साक्षात्कार किए, कुछ ऐसी बातें वहां हो गई कि संपूर्ण डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जब वो जेल से बाहर निकले 1909 में, तब वो पूर्ण रीति परिवर्तन हो चुके थे। फिर भारत की स्वतंत्रता और इस तरह का विद्रोह करने में उन्हें कोई रस नहीं था, एक आध्यात्मिक ज्योति जग गई थी। उसका विस्तृत वर्णन उन्होंने लिखा है, वो जेल में क्या क्या हुआ, और वहां पर एक बंदी की तरह बहुत यातनाएं उनको सहन करनी पड़ी, बहुत ज्यादा यातनाएं। एक तरह से वो भी काला पानी की सजा थी, बहुत अभाव में जीना पड़ा, परंतु अंदर ऐसे आध्यात्मिक अनुभव हो गए कि जब वो निकले तो वो पुराने अरविंद घोष नहीं थे जो क्रांतिकारी थे, कुछ और थे। फिर उनकी रुचि अध्यात्म में बढ़ गई, फिर वो भाषण देना, वो लिखना, वो सब बंद हो गया और वो सीधा पौंडीचेरी चले गए और वहां पर एक नवीन आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत की। ऐसा क्या हो गया होगा उस जेल में, छोटा सा कमरा, सूरज की किरण भी नहीं आती थी उस कमरे में, ऐसी अंधकारमय काल कोठरी में, और शारीरिक यातनाएं बहुत सहन की, पर उनका कहना है वो कुछ भी नहीं था, कुछ तो अंदर हो गया परिवर्तन, एक ऐसा परिवर्तन जिसने उनका जीवन ही बदल दिया, क्रांति की ओर जाने वाला वो व्यक्ति अध्यात्म की ओर मुड़ गया और वो सब कुछ हुआ एकांत के उन पलों में, अलीपुर के उस जेल में। पांडिचेरी में बहुत बड़ा आश्रम है और वो एक दूसरी कहानी है कि उनका जीवन आगे क्या रहा। तो ये बात हम इसलिए बता रहे हैं, एकांत के दो अर्थ है, एक स्थूल एकांत, एक सूक्ष्म एकांत, और दोनों भी जरूरी है। सूक्ष्म जिसकी बाबा मुरलियों में चर्चा करता है, एकांत अर्थात एक के अंत में खो जाना, ये तो अध्यात्म की सर्वोच्च अवस्था है, ये मंजिल है, परिणाम है। स्थूल एकांत मार्ग है। स्थूल एकांत अर्थात जहां हम अकेले हो, स्थूल एकांत अर्थात और कोई ना हो। मुरलियों में कई बार आता है एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करो। एक हफ्ते के अंदर ही एक मुरली में आया था, ऐसा एकांत हो कि मनुष्य भी दिखाई ना दे। भारत में इतिहास में ऐसे संत महात्मा हुए थे, वो बार बार एकांत में जाते थे और वहां बैठकर प्रकृति के सानिध्य में चिंतन करते थे या ईश्वर भजन करते थे। तो एक है सूक्ष्म, एक है स्थूल। सूक्ष्म एकांत तो जैसे कहा परिणाम है, हम चर्चा करेंगे स्थूल एकांत की, और उसी के साथ साथ जुड़ा हुआ है सूक्ष्म एकांत। स्थूल एकांत अर्थात भीड़ से दूर, स्थूल एकांत अर्थात जन समुदाय से दूर, अकेला, जहां कोई नहीं है, हम है केवल। मुरलियों में आता है छत पर चले जाओ, बगीचे में चले जाओ और विचार सागर मंथन करो। क्योंकि मनुष्यों की भीड़ भाड़ में हमारी अपनी आवाज खो जाती है, इसलिए ऐसी जगह, ऐसा स्थान, ऐसा परिसर, ऐसा प्रांगण जहां पर हम स्वयं को सुन सके, अंतर मन में उठने वाली आवाज कुछ तो कह रही है, कॉन्शियंस कुछ तो बोल रही है, वो अंतर मन की आवाज सुननी है एकांत में। हमारी तपस्या एकांत की तपस्या है। संगठित योग का अपना महत्व है, संगठित ज्ञान की चर्चा करना, ज्ञान सुनना अलग है, परंतु सुन बहुत रहे हैं, खाना ही खा रहे हैं, पचा नहीं रहे, ये क्लास वो क्लास, इधर से ज्ञान उधर से ज्ञान, कानों में सब जा रहा है पर डाइजेशन नहीं हो रहा है। आध्यात्मिक अपच, स्पिरिचुअल इनडाइजेशन, खाली सुन रहे हैं परंतु उसको पचा नहीं पा रहे हैं। पचाने की ये प्रक्रिया होगी एकांत में। इसलिए जो सुना है, यहां से एकांत में जाओ और उसका चिंतन करो। शास्त्रों में तीन बातें लिखी है, श्रवण, मनन, निनिध्यासन। श्रवण अर्थात सुनना, फिर जो सुना है उसका मनन करना, और तीसरा उसको जीवन में लाना, प्रैक्टिकल लाइफ में लाना। ये तीन कार्य है। ऐसा ना हो कि हमारा ज्ञान सुनना केवल भक्ति मार्ग रह जाए और कंडरस रह जाए। वो प्रथम सोपान है। दूसरा सोपान है मनन, और तीसरा सोपान है निनिध्यासन। निनिध्यासन अर्थात सुने हुए ज्ञान को जीवन में साकार करना। और ये तीनों, दूसरे दो कार्य मनन और निनिध्यासन, एकांत में होंगे। सबसे पहला प्रश्न तो ये है, एकांत क्यों जरूरी है, उसके ये सारे उत्तर। दूसरा प्रश्न है, एकांत कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? सब जगह भीड़ ही भीड़ है, परंतु फिर भी ऐसे कुछ स्थान है जहां एकांत प्राप्त किया जा सकता है। महाराष्ट्र के संत तुकाराम महाराज के जीवन में दिखाते हैं, वो बीच बीच में किसी एक छोटी से पर्वत के ऊपर जाकर बैठते थे और वहां बैठकर ईश्वर भजन करते थे। जब जब घर में कुछ होता था या पत्नी नाराज होती थी वो वहां चले जाते थे और वहां बैठकर हरि चिंतन करते थे। छत, बगीचा, कोई निसर्गरम्य स्थान और वहां जाना है केवल फोटो निकालने के लिए नहीं, रुककर उसका आस्वाद लेने के लिए। हम देखते हैं माउंट में कितने टूरिस्ट आते हैं, आए आए बराबर कैमरा निकाला, फोटो खींचे और चल दिए, वो तो देखा ही नहीं जिसलिए आए थे, वो निसर्ग का सौंदर्य देखा ही नहीं, लक्ष्य सारा फोटो खींचने पर है। तो ढूंढना होगा जगह हरेक को, चाहे कोई कितना भी व्यस्त है, शहर के बीचों बीच रहता है, पर जरूर ऐसा कोई ना कोई स्थान तो होगा जहां पर एकांत है, जहां पे किसी भी मनुष्य की आवाज नहीं है। और यदि ऐसा स्थान दिन भर की व्यस्तता में नहीं मिलता तो सुबह तो अवश्य है, अमृत वेले के बाद का जो समय है, सोने का समय नहीं है, चिंतन का समय है, मनन का समय है, एकांत का समय है, उस समय एकांत में चले जाना, स्वयं से बात करना, बाबा से बात करना, ज्ञान का चिंतन करना, ये तीन कार्य है जो हरेक को रोज करने हैं, खुद से बातें, भगवान से बातें और ज्ञान का चिंतन। ये कंपलसरी तीन चीजें दिनचर्या में आ जाए, बिना इन तीन चीजों के अध्यात्म अधूरा है। अगला प्रश्न है, एकांत कहां और कब? तो कब का उत्तर दिया अमृत वेले के बाद। कब का उत्तर है शाम का समय, कब का उत्तर है रात को सोने से पहले, कब का उत्तर है दिनचर्या में कोई भी ऐसा समय जब हम फ्री हैं। वो एकांत अपना कमरा भी हो सकता है, बजाय इसके कि व्यर्थ की चर्चा करे, व्यर्थ की बातें करे, झरमोई झगमोई करे, एकांत में चले जाना। एकांत क्यों जरूरी है, एकांत कहां प्राप्त करे, एकांत कब प्राप्त करे, जर्मन के बहुत बड़े एक विचारक थे कभी एकहार्ट, उसकी आदत थी अकेले में जंगल में जाकर बैठने की और प्रभु चिंतन करने की। एक बार वो इसी तरह जंगल में बैठा, चुपचाप बैठा था, उसके कुछ मित्र वहां से गुजर रहे थे और वो उसके पास आ गए और उन्होंने कहा कि तुम अकेले बैठे थे इसके लिए हमको लगा कि हम तुम्हारे पास आ जाए तुम्हें कंपनी देने के लिए। वो कहता है, मैं भगवान की कंपनी में था, प्रभु के संग में था, तुम लोगों ने आकर मुझे अकेला कर दिया। तो जो आत्मा एकांत में रहती है उसे किसी की भी आवश्यकता नहीं रहती। तो इस पार्श्व भूमि के साथ अब हम ये देखेंगे एकांत में हमें करना क्या है। एकांत क्या है ये देखा, एकांत का क्या महत्व है, एकांत कब प्राप्त करे, क्यों प्राप्त करे, कहां प्राप्त करे, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है एकांत में हम क्या करें। ऐसी कौन सी बातें करें एकांत में बैठकर, तो ऐसी 12 चीजें हम करेंगे इन सॉलिट्यूड। सबसे पहला है आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। जीवन जो अस्त व्यस्त है उसको अनुशासित करना है, जीवन जो बह रहा है कहां जा रहा है पता नहीं, जीवन की इस बहती धारा को अनुशासन में लाना। आंतरिक स्थिति जो अस्त व्यस्त हो चुकी है उसको अनुशासन में लाना, इसको कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। और जब तक ये सेल्फ डिसिप्लिन नहीं, जीवन स्थिर भी नहीं हो पाता। मिलिट्री, आर्मी, ये सब लोग बहुत डिसिप्लिन से जीते हैं, उनका जीवन बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत सारे नियम है, कायदे है, कानून है, इसलिए वो इतना सज्ज तैयार रहते हैं, एवर रेडी रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन डिसिप्लिन है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ब्रह्मा बाबा। 90 एज की उम्र में, 90 साल की उम्र में भी ये व्यक्ति बिना चश्मे की है, 90 वर्ष की उम्र में भी ये व्यक्ति बैडमिंटन खेल रहा है, 90 वर्ष की उम्र में भी ये व्यक्ति पहाड़ों पर चढ़ रहा है, 90 वर्ष की उम्र में भी ये व्यक्ति योग में तटस्थ बैठ रहा है। ये दर्शाता है पूर्व जीवन कितना अनुशासन में बीता होगा, नहीं तो 90 वर्ष तक व्यक्ति निढाल हो जाता है, खटिया पकड़ लेता है, बेड रिडन हो जाता है। जीवन कितना अनुशासन से रहा होगा, कितना डिसिप्लिन्ड लाइफ रहा होगा, ये दर्शाता है। तो एकांत में क्या करना है, स्वयं को अनुशासित करना है, अर्थात अपने जीवन के कुछ फिक्स्ड रूल्स बनाने हैं, बस ये करना ही है, नियम बना लिया है। अमृत वेला इतने बजे उठना, इतने बजे तक अमृत वेला करना है, अमृत वेले के तुरंत बाद ये पढ़ना है 15 मिनट, या एक्सरसाइज करनी है, या व्यायाम करना है, या वॉक के लिए जाना है, या कोई क्लास सुननी है, या कुछ लिखना है, या कोई सेवा करनी है, परंतु सेवा करते हुए भी मौन में और ज्ञान का चिंतन करते करते। ये जो समय है 4:45 से 7 बजे तक का बहुत महत्वपूर्ण समय है। मुरली चालू होने से पहले, अमृत वेले के बाद इस समय को सफल करना है, चिंतन में, अध्ययन में, सेल्फ स्टडी में। तो यह सबसे पहला काम है जो एकांत में करना है, नियम बना लेना, अनुशासन के नियम, फिक्स्ड नियम, और उनके ऊपर चलते जाना। ऐसे नियम जो सर्वमान्य है, ऐसे नियम जो परमात्मा मान्य है, जो परमात्मा प्रदत्त है, गॉड्स गिवन। क्योंकि जीवन में दिनचर्या जैसी होगी या दिन की शुरुआत जैसी होगी उसका ही परिणाम पूरे दिन में पड़ेगा। सुबह सुबह ही व्यर्थ किया, सारे दिन भर व्यर्थ। सुबह सुबह ही टाइम वेस्ट, सारे दिन भर टाइम वेस्ट। सुबह सुबह ही सोशल मीडिया और डिजिटल वर्ल्ड में घुस गए, सारे दिन भर उसी का आकर्षण। जो सुबह किया जाता है वो सारे दिन भर खींचता है। सुबह यदि चिंतन किया, श्रेष्ठ चिंतन, सारे दिन भर में भी अपने आप चिंतन होते रहेगा न चाहते हुए भी। और सुबह व्यर्थ चिंतन, सुबह फोन कॉल, सुबह व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ बोलना, अधिक वाचा में आना, तो दिनचर्या भी वैसी ही। तो सबसे पहला काम जो एकांत में करना है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। दूसरा कार्य है आत्म सेल्फ एनालिसिस, स्वयं का विश्लेषण करना, आत्मविश्लेषण, स्वयं को देखना, कौन सी चीज मैंने की वो ठीक थी, गलत थी, क्या थी, अब तक का जो जीवन रहा उसमें गलत क्या है, सार क्या है, असार क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, परमानेंट क्या है, टेम्पररी क्या है, पाप क्या है और पुण्य क्या है, या जीवन बस बहा जा रहा है, किधर जा रहा है पता नहीं। सेल्फ एनालिसिस, आत्मविश्लेषण, यह दूसरा काम है जो एकांत में करना है। तीसरा कार्य जो एकांत में करना है वो है स्वस्मृति, सेल्फ रिमेंबरिंग। क्योंकि सारे पापों की जड़ आत्मविस्मृति है, आत्म अबोध है, इसलिए सारे पुण्यों की शुरुआत भी आत्मस्मृति से होगी। खुद खुद को भूल याद करना, मैं कौन, मैं कहां से, मुझे करना क्या है, लक्ष्य क्या है जीवन का, सेल्फ रिमेंबरिंग, खुद को याद करना। ये महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि व्यस्त दिनचर्या में हम स्वयं को भूले रहते हैं, केवल शरीर याद रहता है या व्यवसाय याद रहता है या जिम्मेवारियां याद रहती है, ड्यूटी याद रहती है, सेवा याद रहती है, कौन कर रहा है ये सेवाएं वो भूला हुआ रहता है। तो तीसरा कार्य है सेल्फ रिमेंबरिंग अर्थात आत्मिक स्मृति का अभ्यास, मैं कौन हूं, मैं कहां से हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं आई कहां से हूं, मुझे जाना कहां है। योग अलग, हम बात कर रहे हैं चिंतन की, एकांत में बैठकर सोचना, गहराई से सोचना। बाबा जब बनारस में थे तो नदी के तट पर रोज जाकर चिंतन करते थे, मुंबई में जब थे चौपाटी पर जाकर बैठकर एकांत में चिंतन करते थे, संसार के दुखों के बारे में सोचते थे, स्वयं के जीवन के बारे में सोचते थे। हम कितना सोच रहे हैं, एकांत का अनुभव, एकांत में जो बिखरा हुआ है वो जुड़ जाता है। चिरा चिरा जुड़ला माजा, मीत समाजा संग झालो, मैं खुद ही अपना संग हो गया हूं, अब मुझे किसी के संग की आवश्यकता नहीं, वो एकांत है। चौथा काम जो एकांत में करना है सेल्फ ट्रेनिंग, आत्म प्रशिक्षण, खुद को खुद प्रशिक्षण देना है, ट्रेनिंग देना है। जैसे मिलिट्री कैंप्स में कैसी ट्रेनिंग दी जाती है, सुबह इतना भागना ही है, इतनी दौड़ लगानी है, ये करना ही है, मॉक ड्रिल्स करते हैं, इतनी ड्रिल करनी ही है। हम स्पिरिचुअल आर्मी है, सल्वेशन आर्मी है, हमें भी हर दिन क्या करना होगा, सेल्फ ट्रेनिंग, खुद को नई स्किल सिखाओ, खुद को कोई नई बात सिखाओ, खुद को ट्रेनिंग दो। चिंतन की ट्रेनिंग देनी है, लिखने की ट्रेनिंग देनी है, बोलने की ट्रेनिंग देनी है। संसार में जितने महान वक्ता हुए थे वो एक अभ्यास करते थे, इमेजिनरी ऑडियंस, काल्पनिक सभा को अपने सामने देखते थे और उनके सामने बोलने का अभ्यास करते थे। महान वक्ता वैसे ही निर्माण नहीं होता। हाँ, कुछ कुछ है जो जन्मजात ऐसे होते हैं, उनकी बात अलग, उनको किसी की ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। बोलती जे अर्णव पीयूषा चे, ये कुछ की बात हो सकती है, परंतु अधिकांश ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो ये ट्रेनिंग एकांत में करनी है, सेल्फ ट्रेनिंग, सोचने की, बोलने की, कर्म करने की। और जो भी महान कार्य है वो एकांत में घटित होते हैं, बाद में बाहर आते हैं। जो महान संगीत निर्माण होते हैं पहले एकांत में निर्माण होते हैं फिर बाहर आते हैं। जो महान कलाकृतियां निर्माण होती है वो एकांत में निर्माण होती है फिर बाहर आती है। जो महान चित्र बनाए जाते हैं एकांत में बनाए जाते हैं फिर बाहर आते हैं। जो महान मूर्तियां बनती है एकांत में बनती है और मन में बनती है फिर मूर्तिकार बाहर उसको लाता है। जो महान भवन बनते हैं शिल्पकार आर्किटेक्ट पहले मन में बनाता है फिर बाहर आती है। इसकी ट्रेनिंग स्वयं को देनी है, सेल्फ ट्रेनिंग। यह चौथा कार्य जो एकांत में करना है। पांचवा, स्व स्वामित्व, सेल्फ मास्टरी, स्वयं को अपनी इंद्रियों का राजा बनाना। एक एक इंद्रिय भाग रही है, आंखें भाग रही है, कान भाग रहे हैं, जिह्वा भाग रही है, त्वचा भाग रही है, नाक भाग रहा है, रूप रस स्पर्श शब्द गंध खींच रहे हैं। रूप खींच रहा है आंखों को, रस खींच रहा है जबान को, गंध खींच रहा है नाक को, शब्द खींच रहा है कान को, स्पर्श खींच रहा है त्वचा को। योगी अर्थात जितेंद्रिय, योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी, योगी अर्थात इंद्रियों का मालिक, योगी अर्थात शरीर का मालिक, अधीन नहीं। एकांत में इंद्रियों को समझना है, इंद्रियों की चेष्टाओं को समझना है, इंद्रियों में होने वाली उत्तेजनाओं को समझना है। वो इंद्रिया जो उत्तेजित हो जाती है और फिर विकर्म कराती है, वो इंद्रिया एक बार उत्तेजित हो गई तो उनको शांत करना कितना कठिन हो जाता है। स्वयं स्वयं के इंद्रियों को जीतना, यही योगी जीवन है। अभी आपको एक दूसरा होमवर्क दे रहे, सुबह कुछ दिया था, अभी दे रहे, योगी जीवन और भोगी जीवन क्या अंतर है। 21 पॉइंट्स लिखनी है बाद में। ये योगी जीवन, एक कॉलम इधर बनाना है वो योगी जीवन, और ये भोगी जीवन। जो पॉइंट यहां लिखेंगे उसी के विरोध की पॉइंट उधर होगी। केवल लिखना है, ये नहीं कि मैं हूं या नहीं हूं, ये चेकिंग बाद में। पहले ज्ञान, पहले तथ्य, फैक्ट्स कि ये योगी जीवन है, ये भोगी जीवन है। ये लिखते लिखते ही हमें पता चलेगा हम इधर है या उधर, हम इस ओर है या उस ओर है। भगवान को योगी बच्चे बहुत प्रिय है। गीता में लिखा है जो ज्ञानी तो आत्मा है वो मुझे बहुत प्रिय है, जो ज्ञानी तो आत्मा है वो मुझे बहुत प्रिय है। और योगी, योगी के लिए क्या कहा फिर? ज्ञानी बहुत प्रिय और योगी, योगी क्या है? योगी मैं हूं, मेरा ही स्वरूप है योगी। तो ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है, परंतु योगी मैं स्वयं हूं, मुझे बहुत प्रिय है। तो ये कार्य करना है सेल्फ मास्टरी का। छठवां कार्य जो एकांत में करना है, स्वयं स्वयं को प्रेरणा देने का कार्य। हम किसके लिए वेट कर रहे हैं कि कोई आए और हमें कोई ज्ञान की बातें बताए तब हम प्रेरित हो? सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ इंस्पायर्ड बनना है। और सेल्फ इंस्पिरेशन का ये कार्य, स्व प्रेरणा का ये कार्य स्वयं हमें करना है। यदि गिर गए, यदि स्थिति डाउन है, यदि डिस्टर्ब है माइंड, क्या कोई दूसरा इसे ठीक कर पाएगा? डिस्टर्ब हमने खुद किया है उसे, दूसरा कैसे ठीक करेगा? हाँ, मदद हो सकती है थोड़ी बहुत, पर कार्य तो हमें ही करना है अकेले को। सेल्फ इंस्पिरेशन, खुद ही खुदी को समझाना है, खुद ही खुद से बात करना है, खुद ही चिंतन करना है, खुद ही स्वयं को इंस्पायर करना है। स्कॉटलैंड का राजा था रॉबर्ट ब्रूस, शत्रुओं से हार गया 6 बार, बार बार मातृभूमि स्कॉटलैंड पर अंग्रेजों के द्वारा आक्रमण, और हर बार उसकी हार होती थी। हर बार नई सेना खड़ा करता था, फिर आक्रमण करता था, फिर हार होती थी, फिर आक्रमण करता था, फिर हार होती थी। इतना उदास हो गया, इतना दुखी हो गया कि एक दिन एक गुफा में जाके छिप गया और सोच रहा था जीवन का अंत कर दूं। और तभी उसने उस गुफा में बैठे बैठे देखा एक मकड़ी अपना जाल बुन रही है, और जाल बुनते बुनते नीचे गिर गई। उसे आकर्षण हुआ, क्या है अब ये मकड़ी क्या करती है? पहली बार नीचे गिरी, फिर से चढ़ी, फिर से जाल बुना, फिर से गिरी, ऐसा 6 बार हुआ। और वो दुखी रॉबर्ट देखता रहा उस मकड़ी को और मन में संकल्प आया कि 6 बार वो गिर गई, अगर अब वो चढ़ी और अगर अब वो सफल हुई तो मैं फिर से सेना खड़ी करूंगा और फिर से युद्ध करूंगा। और 7वीं बार उस मकड़ी ने फिर से प्रयत्न किया और वो सफल हो गई, और तब उसमें फिर से शक्ति आ गई, एनर्जी आ गई, फिर से नई सेना खड़ी की। पर इस बार मोटिवेटेड था, इंस्पायर्ड था, और अंग्रेजों को खदेड़ कर बाहर कर दिया अपनी मातृभूमि से। self inspiration, स्वयं स्वयं को प्रेरणा देना. उसके बाद है मौन. एकांत में क्या करना है? मौन का अभ्यास करना है. नहीं तो एकांत में भी व्यक्ति शब्दों को खड़ा कर देता है और एकांत में भी व्यक्ति मन में भीड़ को खड़ा कर देता है. संसार छोड़कर चला गया, हिमालय पर बैठा हुआ तपस्या कर रहा है, परंतु मन के अंदर वही बाजार है जिस बाजार को छोड़कर वो भागा था. मन में बाजार, मन में भीड़ लोगों की. तो एकांत में मौन का अभ्यास करना है. मौन अर्थात बहुत सारे अर्थ है. स्थूल में न बोलना, परंतु मौन अर्थात आत्मचिंतन, इसका बोलने से कम संबंध है. कोई व्यक्ति बोलते हुए भी मौन में है और कोई व्यक्ति न बोल रहा है तो भी सबसे ज्यादा टॉकेटिव बातूनी हो सकता है. मौन. अगला कार्य जो एकांत में करना है, स्वप्न, विजन, नए स्वप्न देखना, विजुअलाइजेशन, देख लेना मैं ये हूं. और सबसे बड़ा स्वप्न जो देखना है वो ये कि मैं फरिश्ता हूं. स्वयं को देखना, मेरा अपना फरिश्ता स्वरूप, संपन्न स्वरूप आ रहा है उधर से, मुझ में समा रहा है, मैं वो बन चुका हूं. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम कार्य करेगा. जो मैं सोचूंगा वो होगा, पर कितना स्पष्ट मैं उसे देखता हूं, सोचता हूं. ये सारी कायनात, द एंटायर यूनिवर्स विल कॉन्स्पायर टू मेक इट कम ट्रू. ये सारी कायनात षड्यंत्र करेगी जो तुमने सोचा है उसको साकार करने के लिए. और जितने महान खोजक आविष्कारक थे, खोजी थे, उन सब ने स्वप्न देखे थे एकांत में बैठकर. वो देखा था जो अदृश्य है, जो अभी हुआ ही नहीं है. हम हमेशा उदाहरण देते हैं, हम जिस मेडिकल कॉलेज में थे वहां के जो डीन थे उन्होंने अपनी फेयरवेल पार्टी में एक बात कही थी. जब वो रिटायर हो रहे थे, लास्ट डे, उन्होंने कहा था 1960s में जब मैं पहली बार इस मेडिकल कॉलेज में आया, MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फर्स्ट डे, जहां रैगिंग का डर है, वो पहला दिन मेडिकल कॉलेज का 1960s में मैंने यह संकल्प किया था कि एक दिन इसी मेडिकल कॉलेज का मैं डीन बन जाऊंगा. कौन स्वप्न देख रहा है? एक 17-18 साल का लड़का जो अभी अभी डॉक्टर भी नहीं बना, MBBS कॉलेज में पहला दिन है, उसने स्वप्न देखा कि इसी कॉलेज का मैं डीन बन जाऊंगा. और कालांतर में वो बन गए. जो स्वप्न देखा, जो विजन देखा, जो पिक्चराइजेशन किया, जो कलराइजेशन किया, उस विजुअलाइजेशन को उन्होंने साकार कर दिया. जो भी हम देखेंगे स्पष्ट, द एंटायर यूनिवर्स विल कॉन्स्पायर टू मेक इट कम ट्रू. सारी कायनात षड्यंत्र करेगी, षड्यंत्र कुछ भी करेगी, पर वो सत्य होगा. जिसने जो चाहा है वो उसे मिलेगा. दोजे वांछिल तोते लाहो प्राणिजात, प्राप्त होगा उसे. क्या हम चाह रहे हैं? द डीपेस्ट डिजायर्स क्या है, और इस यज्ञ को वरदान है हरेक की मनोवांछित इच्छा यहां पर पूर्ण होगी, जिसको जो चाहिए वो यहां मिलेगा। प्रगति चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, धन चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, नाम चाहिए, जो चाहिए मिल जाएगा एक न एक दिन। तो स्वप्न एकांत में, उसके बाद अगला कार्य जो एकांत में करना है वो है आत्ममंथन, सेल्फ जर्निंग। यहां पर आएगा, एक बताया था सेल्फ रिमेंबरिंग, खुद को याद दिलाना आत्मस्मृति, एक है आत्ममंथन अर्थात ज्ञान मंथन, अर्थात ज्ञान का विचार सागर मंथन। साकार महावाक्य है बाबा के, सबसे ज्यादा दूध कौन सी गाय देती है, जो उगारती है, जुगाली करती है, और यदि कोई गाय दूध कम देती है अर्थात जुगाली कम करती है, उगारती कम है, और जो गाय उगारती नहीं उसे बीमार कहा जाता है, और जो बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते गोया बीमार है। तो एकांत में बैठकर बाबा ने जो मुरली में कहा उसके बारे में सोचना, क्यों कहा, किस लिए कहा, किस कारण से कहा, किस संदर्भ से कहा, क्या इसका गुणार्थ है, क्या इसका भावार्थ है, क्या वाक्यार्थ है, क्या है द डीपेस्ट मीनिंग, क्या है इसका, कौन सी भविष्यवाणी आज की मुरली में आई, कितनी मुरली आ रही है और मुरलियां जा रही है, और हमारे हाथ में क्या है। आत्ममंथन, अगला काम जो एकांत में करना है सेल्फ टॉक। दूसरों से बहुत बातें कर ली, सतयुग त्रेता में थे देवताओं से बातें की, द्वापर कलयुग में मनुष्यों से बातें की, संगम युग का समय है सेल्फ टॉक एंड गॉड टॉक करने का, स्वयं से बातें करने का और भगवान से बातें करने का, खुद ही से खुद बातें करना। मधुबन में एक भाई है जिसने अपने कमरे में लिख के रखा है, नाम नहीं बताएंगे, हे मूर्ख, और सामने अपना नाम क्या कर रहा है, क्या लिख के रखा है, हे मूर्ख, और सामने खुद ही का नाम लिखा आईने में, और लिखा है क्या करने आए थे और कर क्या रहे हो। मधुबन में किस लिए आए थे, तपस्या करने आए थे और क्या कर रहे हो, ब्राह्मण किस लिए बने थे और क्या कर रहे हो, अरे मूर्ख क्या कर रहे हो। अस्य ब्रह्माणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्तेव, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य कहते हैं हे मूर्ख मन क्या कर रहा है, हे मूढ़ बुद्धि गोविंद को भज, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख मन किस ओर जा रहा है, शरीर की ओर, किस ओर जा रहा है, काम की ओर, सेल्फ टॉक। ये रोज होना चाहिए। कितने हो गए, 10। एकांत में जाना और स्वयं से बात करना, सोचना, खुद ही के मन से प्रश्न पूछना। खुद ही का अन्वेषण करना। अगला कार्य एकांत का, बाबा की याद। सहज याद करना, ऐसे याद करना कि संसार में जैसे वो हमें सबसे प्रिय है और उससे अधिक और कोई प्रिय नहीं। उसकी याद का अभ्यास बढ़ाना है और वो याद सहज हो, जैसे सुबह अभ्यास किया था कितने सारे संबंध है उसके साथ। और हम अमृत वेला, तो बाप भी है, टीचर भी है, सद्गुरु भी है, काम पूरा हुआ, चलो आगे। तुम ये भी हो, तुम वो भी हो, तुम ऐसे भी हो, काम पूरा हुआ, चलो आगे। एक माता का अनुभव था, ऐसी ही किसी सभा में उसको होमवर्क आया था कि बाबा मेरा भाई है, तो उसने अनुभव सुनाया था, जब मैं ज्ञान में आई तो मेरा पति पवित्रता में बहुत बाधा डालता था, बहुत विरोधी था, और तब मैंने ये नवीन अनुभव किया था, बाबा को कहा था, बाबा भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। तो उसने चमत्कारिक रूप से बार बार मदद की थी। सर्व संबंध एक से जोड़ देना, वही सब कुछ, उसी में सब कुछ, उसी से सब कुछ, उसी के लिए सब कुछ, उसी में, उसी से, उसी में, उसके लिए, ऐसी अवस्था। कृष्ण गाती गीते, कृष्ण ध्याति चित्ते, हेची कृष्ण होती कृष्ण ध्याने। भागवत में गोपियों का वर्णन है, कृष्ण का ध्यान कर रही है, कृष्ण के गीत गा रही है, हे ची कृष्ण होते, कृष्ण हो गई है, स्वयं ही कृष्ण जैसा व्यवहार कर रही है। काम क्रोध निमले ठाईचे, झाला स्वयमेव पांडुरंग। सारा घिर गया, विकार गिर गए, झाला स्वयमेव पांडुरंग। वो स्वयं ही अनुभव कर रहा है, मैं ही कृष्ण हूं। यह अवस्था है अतिरेक की, यह अवस्था है ईश्वरीय उन्माद की, यह अवस्था है स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन की। याद। और अंतिम कार्य जो एकांत में करना है, साक्षी भाव। सारे नाटक को साक्षी होकर देखना, जो कुछ इस संसार में चल रहा है सब कुछ जैसे एक स्टेज पर हो रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, मैं इसमें हूं नहीं, मैं दर्शक हूं, मूक दर्शक, और सब कुछ मंच पर चल रहा है, उसमें मैं भी दिखाई दे रहा हूं पर मैं साक्षी भी हूं, दर्शक भी हूं तो कलाकार भी हूं। एकांत में बैठकर संपूर्ण जीवन को साक्षी होकर देखना, संपूर्ण साक्षी भाव, डिटैच्ड ऑब्जर्वरशिप। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हे अर्जुन, जन्म को साक्षी होकर देख, मृत्यु को साक्षी होकर देख। जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापे को साक्षी होकर देख, व्याधि व्याधि को भी साक्षी होकर देख, और सभी में क्या क्या दुख है उन दुखों के ऊपर चिंतन कर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम अनित्यम असुखम लोकम, हे कुंती नंदन सुन, हे कौन्तेय, यह संसार अनित्य है, असुखम लोकम, यहां पर सुख नहीं, एकांत में बैठकर साक्षी होकर संसार के दुखों का चिंतन करना, जीवन की सत्यता का चिंतन करना, सत्य क्या असत्य क्या, नित्य क्या अनित्य क्या, तो ये सारे काम करने हैं एकांत में। सबसे पहला जोर से बोलो, क्या करना है पहला कार्य, आत्म अनुशासन, जीवन जो अस्त व्यस्त हुआ है उसको सवारना है, ठीक ठाक करना है। तकदीर की लकीरों में बहुत सारी दरारें पड़ गई है, रिपेयर करो। रिपेयर ऑफ लाइन ऑफ फॉर्चून। दूसरा कार्य सेल्फ एनालिसिस, आत्मविश्लेषण, आत्मसंश्लेषण। तीसरा कार्य आत्म स्मृति, सेल्फ रिमेंबरिंग, खुद ही को बैठ के स्मरण कराना कि तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम किस लिए हो, तुम ये नहीं तुम वो हो, तत्वमसी, थाउ आर्ट दैट। ये जो तुम दिखावा कर रहे हो, ये जो आडंबर रचा रखा है, ये तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं, तुम कुछ और हो, ये मैं नहीं, ये जो इतना रचा हुआ है ये मेरा स्वरूप नहीं, तो मी नवेस, मैं ये नहीं हूं, मैं कुछ और हूं, और जो मैं हूं उससे मैं दूर हूं। खुद को खुद याद दिलाना, खुद को खुद स्मरण कराना, आत्मस्मरण। उसके बाद सेल्फ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण देना है। जो बुद्धि जो मन आलस में डूबा हुआ है उसे प्रशिक्षण देना। मन नहीं चाहता बहुत सारी चीजें करने, पकड़कर करानी पड़ेगी जबरदस्ती, वो नहीं चाहता, परंतु उसकी गर्दन पकड़कर उसको ज्ञान में डुबो दो। क्या करेंगे, मन को गर्दन पकड़ लेना उसकी ऐसी, और उसको डुबोना ज्ञान में। वो संसार में डूबना चाहता है, उसको किस में डुबो देना, ज्ञान में। उसके बाद पांचवा सेल्फ मास्टरी, इंद्रियों का स्वामी बनना है, स्वामित्व इंद्रियों का। उसके बाद सेल्फ इंस्पिरेशन, किसी के लिए वेट नहीं करना कि कोई आएगा और हमें उठाएगा, कोई आएगा और हमें उपदेश देगा। इफ द आंसर नॉट टू थाई कॉल, वॉक अलोन, एकला चालो रे, कोई नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, किसी का इंतजार करना व्यर्थ है। स्वयं स्वयं के प्रेरक बन जाओ और स्वयं को स्वयं उठाओ। उसके बाद साइलेंस, उसके बाद स्वप्न, उसके बाद चिंतन, मनन मंथन, सेल्फ जर्निंग, उसके बाद सेल्फ टॉक, खुद से खुद बात करना, अपने ही मन को समझाना, तुझे क्या चाहिए, तेरी क्या हार्दिक इच्छा है, हे मन तुझे क्या चाहिए, एक सन्यासी तपस्या कर रहा था वन में और अचानक उसे जिलेबी खाने की इच्छा हो गई, आंखें बंद किया तो बस जिलेबी जिलेबी, मार्केट में गया और जिलेबी ली, वापस आया और अपने मन को दिखाया ये है खा, यही चाहिए था ना, और फेंक दी। तेन तत्वे न भुग्निता, संसार की वस्तुओं का उपभोग उनको त्याग कर करो, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, क्योंकि भोग निष्पूर है, कभी भी पूर्ण होते नहीं, जितना भोगो भोग की इच्छा और बढ़ती है, कम होने का तो कोई सवाल ही नहीं। सेल्फ टॉक, उसके बाद में 11वां, बाबा की याद। बाबा कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, जितना हो सके याद करो, 8 घंटा याद करो। किसी मुरली में था कि अपने बाप को केवल 8 घंटा याद करोगे, किसी मुरली में था लौकिक में कभी कोई बच्चा अपने बाप को भूलता है, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बाप को भूलते हो, अभी आया था कुछ दिन पहले मुरलियों में, और आखिरी क्या करना है, साक्षी, साक्षी की तपस्या, साक्षी की साधना, और इसी में जोड़ दो ड्रामा, ड्रामा की सारी पॉइंट्स याद करनी है। 24 घंटे में एक बार क्या करेंगे, ड्रामा की सारी पॉइंट्स एक बार याद करनी है। कौन कौन सी पॉइंट्स है ड्रामा की, माता की तरफ से ड्रामा की कौन कौन सी बातें हैं, जोर से बोलो, ड्रामा चेंज नहीं होता, ड्रामा फिक्स्ड है, ड्रामा एक्यूरेट है, एक और ड्रामा कल्याणकारी है, अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छिपा है, नुकसान के पर्दे के पीछे फायदा छुपा है, और ड्रामा मां है, और ड्रामा न्यायकारी है, इस ड्रामा में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है, हमें लग रहा है यहां अन्याय हो रहा है, वहां अन्याय हो रहा है, यहां जन्म जन्म के हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं आत्माओं के, हम अपनी संकुचित ट्यूबुलर विजन से देख रहे हैं, हमें लगता है ये ठीक नहीं है, पर ड्रामा ठीक है, न्यायकारी है, और महानता की ओर ले जाता है, और बताओ दूसरा कोई जो हमेशा आती है मुरलियों में, हमेशा पॉइंट्स आती है ड्रामा की, हाँ ड्रामा, ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है, ड्रामा में एक आत्मा का पार्ट दूसरी आत्मा से नहीं मिलता, हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है, और उसके साथ एक दूसरी बात जोड़ दो, हर एक आत्मा का भाग्य अपना अपना है, इसके लिए घर में जो बच्चा जन्म लेकर आया है ये मत समझना कि ये ब्रह्मा कुमार बन जाए या ब्रह्मा कुमारी बन जाए, क्योंकि हम है, कैसे नहीं बनता देखता हूं, देखती हूं, इसको ब्रह्मा कुमार बना के रहूंगी, जबरदस्ती ले जाओ उसको और बिठाओ मुरली क्लास में, कोई जबरदस्ती कभी नहीं बन सकता। हर आत्मा अपना पार्ट लेकर आई है और हर आत्मा अपना भाग्य लेकर आई है। जिसको जहां जाना है वो वहीं जाएगा। जबरदस्ती नहीं की जा सकती। यू कैन टेक द हॉर्स टू द पॉन्ड बट यू कैनॉट मेक इट ड्रिंक द वॉटर। घोड़े को तालाब के पास तुम लेके जा सकते हो पर जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते उसको। वो करेगा वही जो उसे करना है। और जो आत्मा घर में आ रही है ये मत सोचो कि ये हमें सुख देने आ रही है। हो सकता है बहुत कड़ा हिसाब किताब लेकर आ रही है। उसके हाथ में तलवार देख लेना जो पालने में शिशु डोल रहा है। वो एक तलवार लेकर आई है और हिसाब चुकतू करेगी। अभी अभी बेटे का जन्म होता है। जन्म के 2 दिन के बाद डॉक्टर कहते हैं उसकी हार्ट में छेद है। 5 लाख रुपए लगेंगे ऑपरेशन के। माँ बाप गरीब है, यहां वहां से सब जगह से पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं, सब कुछ करते हैं। ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के 5 दिन के बाद बच्चा मर जाता है। किस लिए आया था? उसके 5 लाख लिए थे ना तुमने, अब लेने छोड़ेगा नहीं। अब जीवन भर चुकतू करते बैठो। जिसको तुमने दुख दिया था वो फिर आएगा। कर्मों की गति सूक्ष्म है और गुह्य है। तो हर आत्मा का पार्ट अपना अपना, हर आत्मा का भाग्य अपना अपना, हर आत्मा की बीमारी अपनी अपनी, हर आत्मा का प्रारब्ध अपना अपना, हर आत्मा के संस्कार अपने अपने, हर आत्मा का मन अपना अपना, हर आत्मा की बुद्धि अपनी अपनी। एक की बुद्धि ना मिले दूसरे से। हम ये नहीं सकते कह सकते जैसे हम बुद्धिमान थे तुम क्यों कम बुद्धिमान हो। जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो क्या क्या करते थे? एक बच्चा, उसके पिता उसको पूछते कहां है तुम्हारा रिजल्ट। वो रिजल्ट दिखाता है अपने पिताजी को अपना, फेल। सब सब्जेक्ट में पासिंग से भी कम मार्क्स मिले, बहुत कम मार्क्स। वो इतना चिल्लाता है अपने बेटे पर, क्या यही इसके लिए मैंने तुम्हें पढ़ाया, इसके लिए तुम्हें इतना खर्च किया, क्या यही सब करने के लिए तुम स्कूल में भेजता हूं। मैं जब था तो कितना पढ़ाई करता था। वो बच्चा कहता है पिताजी ये आपकी मार्क लिस्ट है जो अभी मुझे मिली। बाकी मेरी भी वैसी ही है वो दूसरी बात, पर ये जो आप देख रहे हो ये आपकी है बचपन की, जो हम में ही नहीं है। हम चाहते हैं हमारे बच्चों में आ जाए। वो करेंगे वही जो हम कर रहे हैं। जो चीज हम में ही नहीं वो उनमें नहीं आएगी, क्योंकि उनका ऑब्जर्वेशन सूक्ष्म है। हम चाहे कितना भी किसी को ज्ञान सुनाए पर आत्मा वही धारण करेगी जो धारणा हम में है। सुबह 8 बजे उठकर तैयार होकर 9 बजे अमृत वेले पर पावरफुल क्लास कराया जा सकता है। जरूरी नहीं है अमृत वेले पर क्लास कराने के लिए वक्ता खुद अमृत वेला करता हो। सारी सभा कहेगी वाह क्या क्लास था, जबरदस्त। पर वो केवल हॉल तक सीमित रहेगा, हॉल के बाहर, और क्लास भी गायब। एक व्यक्ति था, उसने एक बार लेक्चर दिया नॉन वेजिटेरियन फूड पर, कहा कि बिल्कुल नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। 1 घंटा तक लेक्चर दिया। मांसाहार पाप है, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। लेक्चर पूरा हुआ, सभा में एक युवक था, एक स्टूडेंट, उसको जिज्ञासा जागी। कि ये कितना करता है मुझे देखना है, और लेक्चर के बाद ये व्यक्ति होटल में जाता है और नॉनवेज ऑर्डर करता है और खा रहा होता है, और तुरंत वो स्टूडेंट आता है, वो कहता है सर आपने अभी अभी तो इतना बड़ा लेक्चर दिया एक घंटा, तो वो कहता है मैंने लेक्चर दिया, मैंने ये थोड़ी ना कहा मैं नहीं खाता हूं। भाषण का धारणा से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि भाषण कला है केवल, वो किसी में भी आ सकती है, अभ्यास की आवश्यकता है, परंतु धारणा हो वो अलग अवस्था है। शब्द तीर की तरह अंदर मन में चुभ जाए वो तभी होगा जब अंदर धारणा हो। और ड्रामा की कोई पॉइंट, ड्रामा आदि अनादि है, और ड्रामा बाप को पसंद है, तो क्या तुम्हें भी पसंद आना चाहिए। बाप को ड्रामा का हर एक्टर पसंद है, तो हमें थोड़े थोड़े पसंद आने चाहिए, सब नहीं, क्योंकि ये ठीक ठाक नहीं है लोग, कोई कोई तो बहुत खतरनाक है। ड्रामा को, बाबा को ड्रामा की हर सीन पसंद है, क्योंकि वो साक्षी है, कोई मर रहे कोई जी रहे, उसके लिए खेल मात्र है ये। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तो तसफल चाखा, उसको कोई दुख नहीं कोई गम नहीं, सुख और दुख परमात्मा, सुख और दुख का सागर परमात्मा को भिगोता नहीं है। ये उसकी महिमा में एक गुण ऐड कर दो, इस संसार के सुख और दुख वो अप्रभावित है क्योंकि साक्षी है, किसी से कोई लेना देना नहीं। जो जस करी तो तसफल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म को प्रधान बना के रखा है, ऑटोमेटिक मशीनरी है, बाबा कुछ नहीं करता। बाबा से कभी पूछा गया था, बाबा ये द्वापर युग से जो साक्षात्कार होते हैं आप कराते हो क्या? मुरलियों में तो आता है मैं कराता हूं, पर जब अव्यक्त बाबा से प्रश्न पूछा गया था हिस्ट्री हॉल में, तीन प्रश्न पूछे थे सूरज भाई जी ने जब बहुत कम लोग थे, उसमें से एक प्रश्न ये था कि बाबा जो द्वापर युग से भक्तों को साक्षात्कार होता है क्या आप कराते हो? बाबा ने कहा था मैं नहीं कराता, अपने आप होते हैं। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्तिया तीन देख ही तैसी, जिसकी जो भावना है उसको वही दिखाई देता है। जो हनुमान का भक्त है दिन रात हनुमान 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 दिखाई देता है, जो काली का भक्त है उसको काली दिखाई देती है, ऑटोमेटिक दिखता है, इट्स अ ऑटोमेटिक मशीनरी। और वास्तव में जो साक्षात्कार होते हैं वो मन का ही प्रक्षेपण है, प्रोजेक्शन। तो बाबा ने कहा था मैं नहीं कराता, अपने आप होता है। तो कितने हो गए ऐसे? 12 काम है ये, एकांत में हम सभी को करने हैं। तो अभी सभी फिर से अलर्ट होके बैठेंगे और हम साक्षी भाव का अभ्यास करेंगे, उसके बाद प्रश्न उत्तर का सेशन। एक विशाल पर्दा और जिसमें दिखाई दे रहा है मेरा संपूर्ण जीवन। जीवन के सुख और जीवन के दुख, जीवन की पराजय और जीवन की जीत, जीवन के सुख भरे क्षण और दुख भरे क्षण, जीवन में आई संपन्नता और जीवन की दरिद्रता, स्वजनों का प्रेम और स्वजनों की घृणा, जीवन के मधुर संबंध और जीवन के वो संबंध जो कड़वाहटों से भरे हैं, मैं आत्मा संपूर्ण साक्षी, जीवन के बदलते दृश्य देख रही हूं, जो कुछ इस ड्रामा में हुआ वही सत्य है, कल्याणकारी है, न्यायकारी है, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं। सृष्टि मंच पर खेल चल रहा है और मैं मुख्य दर्शक हूं। ये ड्रामा भगवान को पसंद है, मुझे भी पसंद है। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को मैं प्रेम से स्वीकार करता हूं। जो हो रहा है, जो हुआ, जो होगा, सब कुछ, मैं आत्मा संपूर्ण साक्षी हूं। मन की सुखद अवस्था, भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान, चेतना की शक्तिशाली किरण, मैं हूं। ओम शांति।